अध्याय 43 मूसा को मृत्यु। ये अध्याय व्यवस्था विवरण 31 से 34 पर आधारित है। उसके लोगों के साथ परमेश्वर के सभी लेन देनों में उसका प्रेम और उसकी करुणा मिली हुई है, जो उसके कठोर और निष्पक्ष न्याय का असाधारण प्रमाण है। इसे इब्रियों के इतिहास में उदाहरण सहित समझाया गया है। परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत आशीषित किया है। उसके प्रति उसकी स्नेहपूर्ण करुणा को मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया गया है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराती है, अपने पंख फैलाकर उन्हें अपने परों पर उठा लेती है, वैसे ही यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। लेकिन फिर भी उन्हें उनके पापों के लिए कितना शीघ्र और कठोर दंड दिया गया। परमेश्वर का अनंत प्रेम एक पतित जाति को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र की भेंट द्वारा प्रकट किया गया है। मसीह पृथ्वी पर अपने पिता के चरित्र को मनुष्य पर प्रकट करने के लिए आया, और उसका जीवन ईश्वरीय संवेदना और स्नेहशीलता से भरपूर था। और फिर भी मसीह स्वयं घोषणा करता है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:18। यही वाणी जो धीरजवंत प्रेमपूर्ण विनती करते हुए पापी को उसके पास आने का और शांति और क्षमा प्राप्त करने का निमंत्रण देती है, न्याय होने के समय उसकी करुणा का तिरस्कार करने वालों को कहेगी, मेरे सामने से चले जाओ हे शापित लोगों। मत्ती 25:41। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर को एक दयालु पिता ही नहीं, वरन धर्मी न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि वो दया करने में और अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने में आनंदित होता है, फिर भी वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। निर्गमन 34:7। सभी जातियों के राजा ने घोषणा की थी कि मूसा इज़राइल की मंडली को समृद्ध देश में अगुवा बनकर नहीं ले जाएगा, और परमेश्वर के दास की आग्रहपूर्ण गिड़गिड़ाहट उसकी दंडाज्ञा में परिवर्तन न करा सकी। वो जानता था कि उसे मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो इज़राइल के प्रति अपने दायित्व को नहीं भूला। उसने पूरी निष्ठा से मंडली को प्रतिज्ञा की धरोहर में प्रवेश के लिए तैयार करने की चेष्टा की थी। पवित्र आज्ञानुसार मूसा और यहोशू तंबू में लौटे, और बादल का स्तंभ आकर द्वार पर छा गया। यहां लोगों को विधिवत तरीके से यहोशू के प्रभार के सुपुर्द किया गया। इज़राइल के अगुवे के रूप में मूसा का कार्य समाप्त हुआ, फिर भी वो स्वयं को लोगों की भलाई में भूल गया। एकत्रित भीड़ की उपस्थिति में मूसा ने परमेश्वर के नाम में अपने उत्तराधिकारी को पवित्र प्रोत्साहन के ये शब्द संबोधित किए, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न कर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसके बाद वो लोगों के अधिकारियों और पुरनियों की ओर मुड़ा और उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का पवित्र कार्यभार दिया। जब लोगों ने उस वृद्ध पुरुष पर अपनी दृष्टि स्थिर की जो शीघ्र ही उनसे अलग होने को था, उन्होंने उसके अथक परिश्रम, उसके ज्ञानपूर्ण परामर्श और उसकी पिता समान भावुकता को एक नए और गहरे आभार के साथ स्मरण किया। कितनी बार जब उनके पाप परमेश्वर की न्याय संगत दंडाज्ञा को आमंत्रित करते थे, मूसा की प्रार्थनाओं के कारण वो उन्हें दंड नहीं देता था। पश्चाताप ने उनके दुख को बढ़ा दिया। करवाहट के साथ उन्होंने स्मरण किया कि उनकी अपनी विकृतता ने मूसा को उस पाप के लिए उकसाया जिसके लिए मरना था। उनके प्रिय अगुवे का हटाया जाना इज़राइल के लिए उसके मूसा के अभियान और जीवन के जारी रहने की स्थिति में मिलने वाली झिड़की या फटकार से कहीं अधिक प्रभावशाली निंदा थी। परमेश्वर उन्हें आभास करवाना चाहता था कि उन्हें अपने भावी अगुवे का जीवन इतना कष्टपूर्ण नहीं बनाना था जैसा कि उन्होंने मूसा के साथ किया था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ उसी के द्वारा दी गई आशीषों के माध्यम से बात करता है, और जब इनका आभार नहीं माना जाता तो आशीषों के हटाए जाने द्वारा बात करता है, ताकि उन्हें उनके पाप दिखाए जा सके और वे उसके पास सहृदय लौट आएं। उसी दिन मूसा को आदेश दिया गया, नबी नामक चोटी पर चलकर कनान देश को देख ले, जिसे मैं इज़राइल की संतान के अधिकार में दूंगा। तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। पवित्र बुलाहट की आज्ञा का पालन करते हुए मूसा कई बार छावनी को छोड़कर परमेश्वर से संपर्क करने जाता रहा था, लेकिन इस बार उसे एक नए और रहस्यमय कार्य के लिए प्रस्थान करना था। उसने अपने जीवन को अपने सृष्टिकर्ता के हाथों में समर्पित करने के लिए जाना था। मूसा जानता था कि उसे एकांत में मृत्यु को प्राप्त होना था। किसी सांसारिक मित्र को अनुमति नहीं थी कि वो मूसा के जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी सेवा टहल करे। उसके सामने जो दृश्य था उसमें एक रहस्य और भयानकता थी जिससे उसका हृदय सहम गया। उसकी देखरेख और उसके प्रेम के पात्र लोगों से अलग होना उसके लिए सबसे कठोर परीक्षा थी। इन लोगों के साथ उसकी रुचि और उसका जीवन लंबे समय से जुड़े थे, लेकिन उसने परमेश्वर में विश्वास रखना सीखा था और निस्संदेह विश्वास के साथ उसने स्वयं को और अपने लोगों को परमेश्वर की करुणा और प्रेम को सुपुर्द किया। अंतिम बार मूसा अपने लोगों की मंडली में खड़ा हुआ, फिर से परमेश्वर का आत्मा उस पर आकर ठहरा और सबसे उत्कृष्ट और मर्मभेदी भाषा में उसने प्रत्येक घराने को आशीर्वाद दिया और अंत में वहां उपस्थित सभी लोगों को ये आशीष दी, हे यशरन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाशमंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे, और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ी करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। व्यवस्था विवरण 33 आयत 26 से 29। मूसा मंडली से मुड़कर चुपचाप और अकेला पहाड़ की ओर चल पड़ा। वो नबी पहाड़ पर पिसगा की चोटी पर चढ़ गया। उस एकांत चोटी पर खड़े होकर मूसा ने अपनी तेज आंखों से उसके सामने फैले दृश्य को निहारा। दूर पश्चिम में फैला था महान समुद्र का नीला जल, उत्तर में आकाश के नीचे हर्मन पर्वत खड़ा था, पूरब में मोआब का पठार था और उसके आगे था बाशान, इज़राइल की विजय का दृश्य, और दक्षिण में फैला हुआ था वो मरुस्थल जिसमें वे लंबे समय तक भटके थे। एकांत में मूसा ने कठिनाइयों और अस्थिरता के अपने जीवन का अवलोकन किया, जब से वो मिस्र में एक प्रत्याशित राज्य और दरबार की प्रतिष्ठा को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ अपना स्थान विशेष पाने आया था। उसने यित्रो की भेड़ बकरियों के साथ मरुघर में बिताए कई वर्षा को, ज्वलंत झाड़ी में स्वर्गदूत का प्रकट होने को और इज़राइल के छुटकारे के लिए उसे बुलाए जाने को याद किया। एक बार फिर उसने चुने हुए लोगों के पक्ष में किए गए परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रभावशाली चमत्कारों को और उनके उपद्रव और चिरकालीन यात्रा के दौरान परमेश्वर की चिर सहिष्णु करुणा को देखा। बावजूद इसके कि परमेश्वर ने उनके लिए इतना कुछ किया, मूसा की निजी प्रार्थनाएं और उसके परिश्रम के बावजूद मिस्र छोड़कर आने वाली सेना के वयस्कों में से केवल दो व्यक्ति प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश योग्य निष्ठावान पाए गए। जब मूसा ने अपने श्रम के परिणाम का अवलोकन किया, बलिदान और परीक्षा का उसका जीवन व्यर्थ सा प्रतीत हुआ। लेकिन जिस उत्तरदायित्व को उसने संभाला था उसके लिए उसे खेद नहीं था। वह जानता था कि उसका कार्य और विशेष गतिविधियां स्वयं परमेश्वर द्वारा निर्धारित थी। जब उसे पहली बार दासत्व से बाहर आए इज़राइल का अगुवा बनने को कहा गया, उस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए उसे संकोच हुआ, लेकिन जब से उसने उस कार्य को अपने हाथों में लिया उसने उसको पूरी तरह निभाया। जब परमेश्वर ने उसे सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव रखा और इज़राइल को नष्ट करना चाहा, मूसा सहमति नहीं दे सका। हालांकि उसकी परीक्षाएं कठिन रही थीं, उसने परमेश्वर की कृपा दृष्टि के विशेष प्रतीकों का आनंद उठाया था। बीहड़ में पड़ाव के दौरान परमेश्वर की सामर्थ और महिमा के प्रदर्शनों के साक्षी होने में व उसके प्रेम की सहभागिता में उसने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया था। उसे लगा कि कुछ समय के पाप का आनंद भोगने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट उठाने को पसंद करके उसने विवेकपूर्ण निर्णय लिया था। जब उसने परमेश्वर के लोगों के अगुवे के रूप में पीछे मुड़कर अपने अनुभव को देखा तो एक गलत कार्य ने उसके जीवन इतिहास को बिगाड़ दिया। यदि उस पाप को मिटाया जा सकता तो उसे लगा कि वो मृत्यु से पीछे नहीं हटता। वो आश्वस्त था, परमेश्वर को केवल पश्चाताप और प्रतिज्ञा के बलिदान की अपेक्षा थी। और मूसा ने फिर से अपने पापों का अंगीकार किया और यीशु के नाम में क्षमा याचना की। और अब प्रतिज्ञा के देश का परिदृश्य उसको दिखाया गया। देश का प्रत्येक भाग उसके सामने रखा गया, जो दूरी के कारण मंद या अस्पष्ट नहीं थे, लेकिन उसकी आनंदित दृष्टि के लिए सुस्पष्ट, विशिष्ट और सुंदर थे। इस दृश्य में इसे ऐसा नहीं दिखाया गया जैसा वो तब दिख रहा था, वरन वैसे जैसा वो इज़राइल के अधीनस्थ परमेश्वर की आशीषों के द्वारा होने वाला था। उसे लगा मानो वो दूसरे अदन को देख रहा था। यहां पर थे लेबनान के देवदारों से आवृत पर्वत, दाख की सुगंध से सुगंधित जैतून से ढके पहाड़, फूले से उजले और अत्यंत उपजाऊ हरे मैदान। यहां उष्ण कटिबंध के खजूर के वृक्ष, वहां गेहूं और जौ के लहराते खेत, चिड़ियों की चहचहाट और नदियों की तरंग से संगीतमय उज्ज्वल घाटियां, सुंदर वाटिकाएं और उत्तम नगर, समुद्र के सारे धन से भरपूर तालाब, पहाड़ों पर घास चरती हुई भेड़ बकरियां और चट्टानों के बीच जंगली मधुमक्खियों की जमा की हुई निधि। वास्तव में ऐसे ही देश का परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से मूसा ने इसराइलियों को वर्णन किया था, यहोवा से आशीष पाया हुआ। प्रकाश के अनमोल पदार्थ के लिए, ओस के लिए, वो गहरा जल जो नीचे है उसके लिए, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फलों के लिए, प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ के लिए, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं उसके लिए। मूसा ने चुने हुए लोगों को कनान में स्थापित हुआ देखा और हर घराने को अपने ही अधिकृत क्षेत्र में। उसने प्रतिज्ञा के देश के परिनिर्धारण के बाद के उनके इतिहास की झलक देखी। स्वधर्म त्याग और उसकी दंडाज्ञा की दुखद कहानी उसके सामने रखी गईं। उसने उन्हें पापों के कारण अधर्मियों के बीच तितर बितर इज़राइल से दूर हुए गौरव को, उसके सुंदर नगर के खंडहर को और उसके लोगों को पराय देशों में बंधक बने देखा। उसने उन्हें अपने पितरों के देश में पुनः स्थापित और अंततः रोम के अधीनस्थ हुआ देखा। उसे समय की धारा में नीचे उतरकर हमारे उद्धारकर्ता के पहले आगमन को देखने की अनुमति दी गई। उसने यीशु को बेतलहम में शिशु के रूप में देखा। उसने परमेश्वर की स्तुति और पृथ्वी पर शांति का सुखद गीत गाती स्वर्गदूतों की सेना की आवाजों को सुना। उसने यीशु के पास जाते ज्योतिषियों का मार्गदर्शन करते तारे को आकाश से देखा, और एक महान ज्योति ने उसके मन मस्तिष्क को भर दिया जब उसने उन भविष्य सूचक शब्दों को सुना। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। गिनती 24 आयत 17। उसने नासरत में मसीह के दीन जीवन को, चंगाई और सहानुभूति और प्रेम की उसकी सेवकाई को एक घमंडी और अविश्वासी जाति द्वारा उसके तिरस्कार को देखा। अचंभित होकर उसने उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था के घमंडपूर्ण उन्नयन को सुना, जबकि उन्होंने व्यवस्था देने वाले को अस्वीकृत और तिरस्कृत किया। उसने यीशु को जैतून के पर्वत पर देखा जब वह अपने प्रिय देश से विदा लेते हुए रोया। जब मूसा ने उन लोगों के अंतिम बहिष्कार को देखा जो स्वर्ग द्वारा धन्य ठहराए गए थे, उन लोगों को जिनके लिए उसने परिश्रम किया था, प्रार्थना की थी और बलिदान किया था, जिनके लिए वह जीवन की पुस्तक में से अपने नाम को मिटवा देने के लिए तैयार था, जब उसने इन भयावह शब्दों को सुना, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, मत्ती 23 आयत 38, उसका हृदय वेदना से भर गया और परमेश्वर के पुत्र के दुख के प्रति सहानुभूति में उसकी आंखों से दुख भरे आंसू निकल पड़े। वह उद्धारकर्ता के पीछे पीछे गतसमनी तक गया और उसने बाग में वेदना को, धोखे को, उपहास को, कोड़े मारे जाने को, कूस पर चढ़ाए जाने को देखा। मूसा को ज्ञात हुआ कि जैसे बीहड़ में उसने सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। उद्धारकर्ता वह तेजस्वी स्वर्गदूत जो उनके पूर्वजों के आगे आगे चला था, उसके प्रति यहूदी जाति द्वारा प्रकट किए गए बैर भाव और पाखर ने मूसा का हृदय दुख, क्रोध और भय से भर गया। उसने मसीह की अत्यंत दुखदायी पुकार को सुना, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों छोड़ दिया? मरकुस 15:34। उसने मसीह को यूसुफ की नई कब्र में लेटे हुए देखा। अत्यंत निराशा का अंधेरा संसार को लपेटे हुए प्रतीत हो रीछ हो रहा था, लेकिन उसने दोबारा दृष्टि डाली और उसे विजेता के रूप में बाहर आते और मंडली का नेतृत्व करते, स्वर्गदूतों की संगति में स्वर्गारोहण करते देखा। उसने मसीह की अगवानी के लिए चमचमाते फाटकों को खुलते हुए और स्वर्गदूतों की उनके सेनापति का विजयगान के साथ स्वागत करते देखा। वहां उस पर प्रकट किया गया कि वही होगा जो मसीह की सेवा में होगा और उसके लिए सनातन फाटकों को खोलेगा। इस दृश्य को देखने पर उसकी मुखाकृति पवित्र तेज से कांतिमान हो गई। उसके जीवन के त्याग और कष्ट परमेश्वर के पुत्र के बलिदान और कष्टों की तुलना में कितने सामान्य थे, असाधारण और अनंत महिमा के मान की तुलना में कितने तुच्छ। दूसरा कुरंथियों 4:17। वह प्रसन्न था कि भले ही कम मात्रा में वह मसीह के कष्टों में भागीदार था। मूसा ने मसीह के अनुयायियों को जगत में सुसमाचार फैलाने के लिए जाते हुए देखा। उसने देखा कि हालांकि इज़राइल के लोग शरीर के अनुसार उस उत्तम नियति के लिए असफल हो गए थे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, अपने अविश्वास के कारण जगत के लिए ज्योति बनने में असफल रहे थे, हालांकि उन्होंने परमेश्वर की दया का तिरस्कार किया था और उसके चुने हुए लोगों के तौर पर मिलने वाली आशीषों को गंवा दिया था, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को नहीं छोड़ा, जिन गौरवपूर्ण प्रयोजनों को इज़राइल द्वारा पूरा करने का दायित्व उसने अपने ऊपर लिया था, उन प्रयोजनों को पूरा होना था। जो भी मसीह के द्वारा विश्वास की संतान बनते, उनकी गणना अब्राहम के वंशजों में होती थी। वे वाचा की प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी थे, अब्राहम के समान। उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था और उसके पुत्र के सुसमाचार को संपूर्ण जगत से परिचित कराना था और उसकी रक्षा करनी थी। मूसा ने सुसमाचार के प्रकाश को यीशु के अनुयायियों के माध्यम से उन लोगों तक चमकते देखा जो अंधेरे में बैठे थे। मत्ती 4:16। और गैर यहूदियों के देशों से हजारों को उसकी वृद्धि की चमक की ओर आते देखा। यह देखकर वह इज़राइल की समृद्धि और वृद्धि में आनंदित हुआ। शैतान का वह कार्य जिसका पालन करके यहूदियों ने मसीह का तिरस्कार किया, मूसा को दिखाया गया, जबकि वे परमेश्वर की आज्ञा का आदर करने का दावा करते थे। अब उसने मसीही जगत को ऐसे ही छलावे में देखा। परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करके भी वे मसीह को ग्रहण करने का दावा कर रहे थे। उसने याजकों और पुरनियों के द्वारा उस अत्यंत कोधित मांग को सुना था, ले जा, ले जा, उसे कूस पर चढ़ा। और उसने तथाकथित मसीही शिक्षकों से इस मांग को सुना, व्यवस्था को हटाओ। उसने सबत का पैरों तले रौंदा जाना और उसके स्थान पर एक अप्रमाणिक संस्था का संस्थापन देखा। एक बार फिर मूसा अचरज और भय से भर गया। जो मसीह में विश्वास करते थे, वे पवित्र पर्वत पर उसी की आवाज में कही गई व्यवस्था को अस्वीकार कैसे कर सकते थे? कैसे कोई भी जो परमेश्वर का भय मानता था, पृथ्वी और आकाश में उसकी सत्ता के आधार उसकी व्यवस्था को परे रख सकता था? प्रसन्नता से मूसा ने देखा कि व्यवस्था अभी भी कुछ निष्ठावानों द्वारा गौरवान्वित और सम्मानित की जाती थी। उसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वालों को नष्ट करने के लिए सांसारिक शक्तियों का अंतिम महान संघर्ष देखा। उसने उस समय को देखा जब परमेश्वर पृथ्वीवासियों को उनके अधर्म के लिए दंडित करने उठेगा, और जिन्होंने उसका भय माना है वे उसके प्रकोप के दिन ढौके और छुपाए जाएंगे। उसने उसकी व्यवस्था को मानने वालों के साथ परमेश्वर की शांति की वाचा को सुना, जब वह अपने पवित्र वास से बोलता है, धरती और आकाश का पुटते हैं। उसने मसीह के दूसरे आगमन को देखा जब वह महिमा सहित आया। उसने धर्मी मृतकों को अनश्वर जीवन में उठते हुए और जीवित पवित्रों को बिना मृत्यु को प्राप्त हुए परिवर्तित होते और हर्ष के गीतों के साथ एक साथ परमेश्वर के नगर जाने के लिए ऊपर उठते हुए देखा। एक और दृश्य उसकी आंखों के सामने खुला। श्राप से मुक्त हुई पृथ्वी, जो हाल ही में उसके सम्मुख फैलाए हुए प्रतिज्ञा के सुंदर देश से अधिक सुंदर थी। वहां पाप नहीं था और मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती थी। वहां बचाए हुओं के समुदायों को अपना सनातन निवास मिला। अकथनीय आनंद के साथ मूसा ने उस दृश्य को देखा, उसकी आशाओं से अधिक आनंदमय छुटकारे की तृप्ति। उनका पृथ्वी भ्रमण हमेशा के लिए समाप्त हो गया था और परमेश्वर का इज़राइल अंततः समृद्ध देश में प्रवेश कर गए। दर्शन फिर से धैधला गया और उसकी आंखें दूर तक फैले हुए कनान प्रदेश पर स्थिर हो गईं। फिर एक थके हुए योद्धा की तरह वह विश्राम करने के लिए लेट गया। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। कई जो मूसा के सुझावों पर ध्यान देने को अनिच्छुक रहे थे जब वह उनके साथ था, वे उसकी कब्र का स्थान जानकर उसके मृत शरीर पर मूर्ति पूजा करने के खतरे में थे। इस कारण यह बात मनुष्यों से छुपा कर रखी गई। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसके निष्ठावान दास के शरीर को मिट्टी दी और उसकी एकाकी कब्र पर पहरा दिया। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, उन सभी चिन्हों और चमत्कारों में जिन्हें दिखाने के लिए यहोवा ने उसे भेजा। और उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। कादेश में चट्टान से पानी निकालने का यश, परमेश्वर को ना देने में मूसा के उस एक पाप के कारण उसका जीवन कलंकित ना हुआ होता तो मूसा ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया होता और वो मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग में जाने के लिए परिवर्तित हुआ होता। लेकिन उसे बहुत दिनों तक कब्र में नहीं रहना था। मसीह स्वयं उन स्वर्गदूतों के साथ जिन्होंने मूसा को गाला था, सुप्त पवित्र को बुलाने के लिए स्वर्ग से उतरकर नीचे आया। मूसा को परमेश्वर के विरुद्ध पाप कराने में अपनी सफलता पर शैतान अति प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मूसा इस प्रकार मृत्यु के अधीनस्थ हो गया था। महान शत्रु ने घोषणा की कि इस ईश्वरीय कथन ने उसे मृतकों पर अधिकार दे दिया था, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:19। कब्र की शक्ति कभी भी खंडित नहीं हुई थी। कब्र में के सभी लोगों को उसने उसके कैदी होने का दावा किया, जिन्हें उस अंधेरे कारागृह से कभी भी छुटकारा नहीं मिलना था। पहली बार मसीह मृतकों को जीवन देने वाला था। जैसे ही जीवन का राजकुमार और उसके कांतिमान दूत कब्र के निकट आए, शैतान अपने आधिपत्य के लिए सावधान हो गया। अपने पापी दूतों के साथ वो उस भूखंड पर अतिक्रमण छेड़ने को खड़ा हुआ जिसे वो उसका होने का दावा कर रहा था। उसने घमंड में कहा कि परमेश्वर का दास उसका कैदी बन गया था। उसने घोषणा की कि मूसा भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में असमर्थ रहा था और ये कि यहोवा को दे महिमा उसने स्वयं के लिए ली थी। वही पाप जो स्वर्ग में शैतान के बहिष्कार का कारण बना और अब मूसा आज्ञा उल्लंघन के कारण शैतान के अधीनस्थ हो गया था। मुख्य देशद्रोही ने पवित्र सत्ता के विरुद्ध उसके द्वारा लगाए गए मूलभूत आरोपों को दोहराया और उसके प्रति परमेश्वर के अन्याय की शिकायतों को दोहराया। मसीह ने शैतान के साथ वाद विवाद में पड़ने से स्वयं को नीचा नहीं किया। वो शैतान पर उसके छलावे द्वारा स्वर्ग में किए गए भयानक कर्मों का आरोप लगा सकता था, जिनके कारण स्वर्ग के वासियों की भारी संख्या का नाश हुआ। वो अदन में बोले गए झूठ की ओर संकेत कर सकता था, जिसके कारण आदम से पाप हुआ और मानव जाति पर मृत्यु आई। वो शैतान को याद दिला सकता था कि इज़राइल को बड़बड़ाने और विद्रोह के लिए बहकाने का काम उसी का था, वो इज़राइल जिसने अपने अगुवे के चिर सहिष्णु धैर्य को थका दिया था और एक असुरक्षित पल की घबराहट में उससे वो पाप करवाया जिसके कारणवश वो मृत्यु के अधिकार के अधीन हो गया था। लेकिन ये कहते हुए कि परमेश्वर तेरी निंदा करे, यहूदा 9, मसीह ने इस सब को अपने पिता के सम्मुख रखा। उद्धारकर्ता अपने शत्रु के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ा, लेकिन उसी समय और वहीं से पतित शत्रु की शक्ति को कम करने और मृतकों को जीवित करने का उसका कार्य प्रारंभ हुआ। यहां परमेश्वर के पुत्र की सर्वोच्चता का प्रमाण था, जिसे शैतान अस्वीकार नहीं कर सकता था। पुनरुत्थान कोसदा के लिए निश्चित कर दिया गया था। शैतान को उसके शिकार से वंचित कर दिया गया। धर्मी मृतक जी उठेंगे। पाप के कारणवश मूसा शैतान के अधिकार के अधीन हो गया। अपनी योग्यता अनुसार वो मृत्यु का न्याय संगत बंधक था, लेकिन उद्धारकर्ता के नाम में अपने अधिकार को थामे हुए उसे मृत्यु से जिलाकर अनश्वर जीवन दिया गया। मूसा कब्र से महिमावान होकर बाहर निकला और अपने मुक्तिदाता के साथ परमेश्वर के नगर में ऊपर उठ गया। मसीह के बलिदान में उदाहरण सहित समझाए जाने से पहले परमेश्वर की न्यायपरता और प्रेम को कभी भी इतनी सुस्पष्टता से प्रदर्शित नहीं किया गया था जैसे कि मूसा के साथ उसके व्यवहार में किया गया। परमेश्वर ने कभी न भुलाने वाला एक सबक सिखाने के लिए मूसा को कनान से बाहर रखा। परमेश्वर संपूर्ण आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है और मनुष्य को परमेश्वर को दे महिमा स्वयं ले लेने से सावधान रहना है। मूसा की इस प्रार्थना को परमेश्वर पूरी नहीं कर सकता था कि उसे इज़राइल की मीरास में हिस्सा दे, लेकिन उसने अपने दास को भुलाया या छोड़ा नहीं था। स्वर्ग का परमेश्वर मूसा द्वारा सहन की गई पीड़ा को समझता था। संघर्ष और परीक्षा के इन लंबे वर्षों को उसने अंकित किया था। पिसगा की चोटी पर परमेश्वर ने मूसा को उस मीरास के लिए बुलाया जो सांसारिक कनान से अत्यंत गौरवशाली थी और अनंत काल के लिए थी। रूपांतरण के पर्वत माउंट ऑफ ट्रांसफिगुरेशन पर मूसा एलिया, जिसका परिवर्तन हुआ था, के साथ उपस्थित था। उन्हें पिता से उसके पुत्र को महिमा और प्रकाश के वाहकों के रूप में भेजा गया था, और इस प्रकार मूसा की इतनी सदियों पूर्व की गई प्रार्थना पूरी हुई। वह लोगों की धरोहर की सीमा में पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के साक्ष के रूप में, जिसमें इज़राइल की सारी प्रतिज्ञाएं केंद्रित थीं, खड़ा हुआ, जो स्वर्ग द्वारा इतना उच्च सम्मान प्राप्त था। उस मनुष्य के इतिहास में नश्वर दृष्टि पर प्रकट किया गया यह अंतिम दृश्य है। मूसा मसीह का प्ररूप था। उसने स्वयं इज़राइल के सम्मुख घोषणा की थी, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। इससे पहले कि मूसा को सांसारिक कनान के लिए इज़राइल की सेना के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा सके, परमेश्वर ने उसे कष्ट और गरीबी के शिक्षालय में अनुशासित करना उचित समझा। स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा करते हुए परमेश्वर के इज़राइल के पास एक कप्तान है, जिसे ईश्वरीय अगुवे के रूप में उसके विशेष कार्य के लिए तैयारी कराने के लिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसे कष्टों द्वारा संपूर्ण बनाया गया, और जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2:18। हमारे उद्धारकर्ता ने कोई मानवीय दुर्बलता या त्रुटि नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा के देश में हमारे लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए उसने मृत्यु को ग्रहण किया। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह परमेश्वर के घर में पुत्र के समान अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम अपने साहस पर और अपनी आशा में विश्वास पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। इब्रानियों 3:5-6।